Shanti. Happy Diwali. यादगार तो भगत लोग आज खूब मनाएंगे, परंतु हम सब बाबा के बच्चे खुशी खुशी से दीपराज के साथ, जिन्हों की दीपक जगी हुई है, वो मंगल मिलन मनाते हैं। तो कितना कॉन्ट्रास्ट है भक्ति और ज्ञान का। आज बाबा के मुरली में कई बातें बाबा ने स्पष्ट की है। तो आज की मुरली में एक विशेष शब्द कई बार बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया है, वो है रुचि। भगवान बहुत रुचि से ऊपर से आते हैं यहाँ तुम बच्चों को पढ़ाने। तो आप बच्चे कितनी रुचि से पढ़ते हो वो आप देखो, और साथ साथ सेवा भी करते हो तो कितना रुचि से आप सेवा करते हो। तो आज की मुरली विशेष दिवाली में हम ये याद रखें कि भगवान कैसे हम भाग्यशाली बच्चों का दीप जगाकर हर रोज ग्रत डालते रहते हैं, ताकि वो ज्योत बहुत सुंदर ढंग से जगी रहे, खुद को लिए भी रास्ता क्लियर हो, परंतु सब आत्माओं के लिए हम रास्ता दिखाने के निमित्त बने। ये है 20 तारीख की साकार बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। कितनी खुशी की बात है, कितनी श्रेष्ठ चिंतन की बात है कि भगवान के साथ हम ज्ञान सुनकर पढ़ रहे हैं। प्रश्न, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य विशुद्ध भावना कौन सी है? कई लोग पूछते हैं ये प्रश्न, उस समय भी पूछते थे, आज तक भी पूछते हैं। तो हम क्या उत्तर देंगे? बाबा ने बहुत मीठे महावाक्य सुनाए हैं। उत्तर, तुम्हारा उद्देश्य कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज स्थापन करना। बहुत ऊंचा, बहुत महान उद्देश्य। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सदगति करेंगे। बुद्धि को कितना बेहद में रखना है, इस सेंटेंस से ही आप समझ सकते हैं। तुम नशे से कहते हो हम सबको सदगति देने वाले हैं, तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। तो कहते कि स्वर्ग में जाना कोई कम बात थोड़ी है। हाँ, फिर भी ऊंच पद पाने की पुरुषार्थ की बाबा बात बताते, परंतु दिल का स्वर्ग में भी पहुंचना लोगों के लिए तो ये बहुत बहुत मुश्किल बात लगती, और हम बच्चों को बहुत सहज भगवान ने ये दिल को गारंटी दी है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं, टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद कबाब जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता, टीचर अलग होता जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता तो पढ़ाते हैं, बहुत रुचि से पढ़ाते, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना, अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। ये बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाप भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, ये क्या है, ड्रामा में ये आवागमन का चक्कर है, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों? कुछ बाबा के नए नए बच्चे बैठे होंगे तो सारी मुरली में नयों को क्या समझाना होता, बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से बता रहे हैं। इससे क्या फायदा, किसी को यहां तो ये संकल्प नहीं आता ना, सब बाबा के पक्के ही निश्चय बुद्धि वाले बच्चे बैठे हैं। बस सिर्फ ऐसे चक्कर ही लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं ये तो 84 का चक्कर लगाते ही रहना है, कब शुरू हुआ कब अंत होगा उसका कोई प्रश्न ही नहीं, चक्कर चलता ही रहता है, चलता ही रहता। तो ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्कर से छूट ही नहीं सकती। इससे तो मोक्ष मिल जाए, ऐसे ऐसे ख्याल कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाएं। और बात कहते हैं ये हो नहीं सकता, मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता। भक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यताएं, भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ और भिन्न भिन्न प्रकार का डिस्ट्रैक्शन और वेस्टेज। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती, आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वो है ही अनादि अविनाशी बिल्कुल एक्यूरेट एक्सर्स। एक भी कम जास्ती नहीं हो सकती। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है, इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, ना कोई मोक्ष पा सकता। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा आप जान गए, अब हम जान गए कैसे हम 84 का चक्कर लगाते हैं। ये भी समझते हो पहले पहले जो आते रहेंगे वो 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वालों के जरूर कम जन्म होंगे। यहां तो पुरुषार्थ करने का है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। कोई इसमें संकोच ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, स्वर्ग तो आना ही है, नई दुनिया बननी ही है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए, तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पाठ बजाते आए हैं, तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सत्युग में तो है ही प्रारब्ध, ये इस समय तुमको समझाया जाता है। कलयुग में भी सत्यों की प्रारब्ध है, नहीं मालूम? सत्युग में भी प्रारब्ध हम अनुभव कर रहे हैं, ये नहीं मालूम? तो अभी संगम युग के सुहावने समय ये पता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में ये बात आती है, मन मना भाव पढ़ाया जाता है स्टेटस के लिए। तुम राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, और घरों वालों को भी समझाया है कि ये नंबरवार आते हैं, धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। राजा की बात नहीं, एक ही शास्त्र है गीता जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। वो धर्म स्थापक जो आते हैं, वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत ही है, जहां बेहद का बाप आते हैं। कोई समय भारत की महिमा थी, फिर कुछ समय वो महिमा चले गई, और अब फिर से न सिर्फ बाबा के पास परंतु संसार में भी मैं देखती हूं कि बहुत बहुत भारत की महिमा बढ़ती जा रही है। परंतु भारत वही तीर्थ स्थान है सारे विश्व की आत्माओं के लिए। जब बाबा की प्रत्यक्षता होंगी तो इस तरह से भारत की भी प्रत्यक्षता होंगी, वो दिन कोई ज्यादा दूर नहीं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सदगति की है। बाप कहते हैं, मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, हम तुमको इस पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम सुख धाम ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते, उनका जन्म मरण तो है नहीं, बाप आया फिर चला जाएगा, उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया, जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रिया कर्म करते हैं, ये बाप चला जाएगा तो पता भी नहीं पड़ा। लास्ट में अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी 2017 दिसंबर 31 को थी, और बाबा ने एक बारी पहले 15 दिसंबर को बता दिया था कि बाबा आपसे छुट्टी ले रहे हैं, ऐसे कुछ शब्द थे। तो बाबा ने स्पष्ट बताया भी, परंतु किसी ने समझा नहीं। और फिर जिस समय लास्ट में 31 दिसंबर बाबा चले गए, वो तो पता भी नहीं था कि बाबा फिर दोबारा नेक्स्ट कल्प ऐसे मिलेंगे। कोई भी और धर्म स्थापक है, उनकी तो बिल्कुल पहचान होती, सेरेमनीज होती, यादगार बन जाता। तो बाबा कहते हैं इनका क्रियाकर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता, उनके तो आने का भी पता नहीं पड़ता। जैसे आना गुप्त, वैसे भगवान का सृष्टि से ऊपर चले जाना भी गुप्त। परंतु फिर भी अभी संगम युग चल रहा है, दिवाली मना रहे हैं, तो फिर भी साथ साथ का अनुभव है। क्रिया कर्म आदि की तो बात ही नहीं है, और सब मनुष्यों का क्रिया कर्म करते हैं। इसमें भी बाबा ने बता दिया है कि बाबा का आना भी गुप्त, जाना भी गुप्त, परंतु बाद में हम सोचते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ। बाप का क्रियाकर्म होता नहीं, उनको शरीर ही नहीं। सत्युग में ज्ञान की बातें तो नहीं होंगी, परंतु साथ साथ भक्ति की बातें होती नहीं, न ज्ञान न भक्ति, बस रोशनी ही रोशनी। ये अभी ही चलती है, और सब भक्ति ही सिखलाती है। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता, वहां बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में है, वहां याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहां होती ही नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी, और इस समय भक्ति व्यभिचारी अव्यभिचारी, उसकी भी सीजन है। और अब की सीजन कौन सी है? अति व्यभिचारी भक्ति है, जिसको रो रो नरक कहते हैं। एकदम तीखे में तीखा नरक है, फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। हम नए नए शब्द निकाल कर स्पष्ट कर रहे हैं, ताकि हम बुद्धि से अच्छी तरह से एक एक बात को समझकर याद रखें। आज रुचि शब्द, तीखा शब्द भूलेंगे नहीं, राइट? भगवान भी रुचि से आते हैं, सब कुछ कार्य रुचि से करते हैं, और भगवान ही तीखे नरक से तीखे स्वर्ग में ले जाते हैं। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होंगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएंगी। तो संगम युग कौन सा युग है? आत्मा के विश्राम का, शरीर के विश्राम का नहीं। बिल्कुल कदम कदम पर बाबा की याद और पुरुषार्थ याद रहे। समझाने में बहुत सहज है, बात कहते हैं, मैं आता ही तब हूं जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेगा, नहीं, भगवान तो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकता। बाबा बहुत मीठी बात सुनाती है, किस्मतगार चाहिए, बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के किस्मतगार बच्चे बने हो। भगवान हमको कहे कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, कमाल की बात है। भगवान की नम्रता और भगवान का इतनी बड़ी दम, भगवान जानते हैं कि सब कुछ वही करेंगे तो फल भी उसी को ही प्राप्त होगा, और हमारे द्वारा कराएंगा तो हमें वो फल प्राप्त होगा। करते भी नहीं है, वो करा रहा है, परंतु तो भी हमको चांस बन जाता है भाग्य बनाने का। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो, सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाती है। सच्ची सेवा पर सर्व आत्माएं सुखी रहे, सर्व आत्माओं की सदगति हो, अपने लिए कोई स्वार्थ भावना नहीं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो तो कितना रुचि से करना चाहिए बाबा, कितनी रुचि से सर्व की सदगति करते हैं। अभी भी सर्व की सदगति होनी है जरूर, ये है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो परंतु गुप्त, आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है, बोलो। बीके का उद्देश्य है विश्व में सत्युगी सुख शांति का स्वराग स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति के प्राइज लेते हैं। प्राइज भी अभी तो सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं है कि स्वर्ग की प्राइज मिलने वाली है, तो प्राइज भी गुप्त। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं, प्रजा को भी प्राइज मिलती स्वर्ग में आने की। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? वो 30 प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको चला थोड़ा बहुत मिल जाता, परंतु विश्व को तो कोई प्राप्ति नहीं, युद्ध चलते ही रहते। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व के बादशाही की। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है, कितनी महिमा करते हैं, सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक है कहाँ? सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो, हथियार पुआर तो कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, दैवी गुण धारण करते हैं। इसीलिए तुम्हारा ही गायन और पूजन है। अंबा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अंबा कौन है, ब्राह्मण है व देवता है, ये भी पता नहीं। अंबा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम है। यहां भी नीचे अंबा का छोटा सा मंदिर है, वो मंदिर अभी बहुत बड़ा बन गया है, कितने लाखों लोग वहां जाते। अंबा को बहुत बुझाई दे देती है, ऐसी तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। क्राइस्ट, बोध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया। तिथि तारीख सब बताते हैं, वहां ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहां भारतवासियों को कुछ पता नहीं हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया। इसीलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। भगवान ऐसे महावाक्य जो उच्चारण कर रहे हैं कुछ कारण से कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं। मनुष्य तो कई बार बोल बातें बता देते, और वे कहते ये मतलब नहीं था, ये मुझे कहना नहीं था। भगवान तो जो शब्द उच्चारण करते एक एक शब्द के पीछे बड़ा भाव है। तभी फिर बाबा कहते ये सब कुछ इतना चल रहा है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो, तुम्हारी आत्मा भी पूज्य और शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती। बाप तो है ही निराकार, वो सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनती। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप तो एवं पूज्य है, यहां आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब नाम एकम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहां तो बड़े बड़े नखपति क्रूरपति जाकर अन्ना अन्ना कहते हैं, कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है, वो कह देते शिवोहम आत्मा सो परमात्मा, हम शिव है, हम आत्मा सो परमात्मा है। अब सोचो कितनी बड़ी भारी बोल की है। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है, अब जज करो। भक्ति मार्ग में राइट सुना है, यहां राइट बताते हैं। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है, उन्होंने तो एक सेंटेंस में कह दिया आत्मा सो परमात्मा, और हम लोग जानते हैं हमसो का अर्थ है 84 के चक्कर को जानना। हमसो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, अब हमसो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्कर में ऐसे आती है, विराट रूप का चित्र भी है उसमें, छोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया ही नहीं है, शुरू ही होता है फेस से, उसके ऊपर छोटी ब्राह्मण है, उसके ऊपर शिव बाबा है, वो दोनों के चित्र में आता ही नहीं। देवताएं कहां से आए, पैदा कहां से हुए, लोगों से ये प्रश्न पूछते उनका दिमाग ही घूम जाता कि ये क्या पूछते हैं। कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सत्युग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ, कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसी हुई है। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ वेद सुनाएगा। बहुत मनुष्य आ जाते, बहुत फॉलोअर्स बन जाते, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत दुकान निकल गए हैं, अब ये सब दुकान खत्म हो जाएंगे। ये दुकानदारी सारे भक्ति मार्ग में है, उनसे बहुत धन कमाते हैं। मेरी भक्ति एक दुकानदारी, एक व्यापार बन गया। ये दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं, हम ब्रह्म योगी तत्व योगी है। जैसे भारतवासी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते है देवता धर्म के, परंतु हिंदू हिंदुस्तान के नाम पर अपने को हिंदू कह दिया। इसी तरह से बाबा को एक इसके संबंध से बात कई बार बाबा बताते, वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहां आत्माएं रहती है। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है। मैं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाप समझाती है कितनी भारी भूल कर दी है, भगवान को ढूंढते रहे, मतलब भगवान से दूर होते रहे, पता ही नहीं पड़ा। ये सब है ब्रह्म, मैं आकर सब ब्रह्म दूर कर देता हूं। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे प्रभु तेरी दीना तेरी गति मत, हे प्रभु तेरी गति मत न्यारी है। गीचते गीच तो कोई गति तो कोई कर न सके, मते तो अनेक अनेक ही मिलती है। न गति कर सकते न मत दे सकते हैं गति की, मते तो अनेक अनेक मिलती। यहां की मत कितनी कमाल कर देती है, श्रीमत कितनी कमाल कर देती, सारे विश्व को चेंज कर देती। भगवान कौन, भगवान क्या करते हैं, क्या कमाल है, रुचि से हम पढ़ते जा रहे हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती है, ये सब ड्रामा में नोंद है। ये भी बच्चे जानते हैं, दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ क्या बात करते हैं, बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई है। बाबा को कहा, ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। तो बाबा ने क्या कहा, बोला नहीं, ये चाबी किसी को नहीं मिल सकती, भगवान सब कुछ दे देता परंतु ये चाबी नहीं देता। उनके एवज में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूं। जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ माँ के हाथ में है तो वो चाहते हैं कि ये मुझे मिले, ये मुझे चाहिए, तो माँ फिर उनको थोड़ा कुछ मीठा खिला लेती है, चॉकलेट खिला लेती है, केक खिला लेती है, तो बच्चे का ध्यान उस तरफ चला जाता। तो बाबा भी ऐसे हम बच्चों को कहते, चाबी तो मेरे हाथ में है, मैं तो किसी को नहीं लूंगा, परंतु हाँ ठीक है, आप विश्व की बादशाह ले लो, मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाती है, और मिलता कुछ भी नहीं। ऐसी नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते या धन मिल जाता, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी पाया। मनुष्य समझते हैं वो रहते ही वैकुंठ में है, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ? ये सब है साक्षात्कार। वो कलयुग में याद करती है कृष्ण को, कृष्णपुरी को, परंतु उस समय तो कहाँ है ही नहीं। बात बैठ सब बातें समझाती है, ये सब है साक्षात्कार। उनको भी पहले पहले, अभी ब्रह्मा बाबा अपनी कहानी सुनाते, इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूं, विनाश भी देखा फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूं। बाबा की प्रवेशता हो गई, बस बाबा ये सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी ये सौदा करने आए हो ना, जो ज्ञान उठाते हैं उनकी एक निशानी बिल्कुल क्लियर सबको नजर आती, उनकी फिर भक्ति छूट जाती। व्रत रखना, सारी रात मंदिर में जागरण करना, ये सब बातें, छोटी बातें बड़ी बातें छूट जाती। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों के माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, मुहाने बाप की, मुहाने बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, देवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत कैसे करना है? कई बारी आज आपने सुना किस तरह से करना है, ये सब कुछ बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरा, ड्रामा की अनादि अविनाशी नींद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है, जो बाबा पहले मोक्ष की खास बता रहे थे। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। आज दिवाली का विशेष वरदान दीप राज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। भगत लोग, आप चैतन्य दीपकों की यादगार जर दीपकों की दीप माना मनाते हैं। आप जगे हुए चैतन्य दीपक बालक बन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हैं। बाप दादा, आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हो। आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीप राज बाप द्वारा बधाइयां लेते सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो। ये दीप राज बाप और दीप रानियों की मिलन का ही यादगार दीपावली है। स्लोगन, आप और बाप दो दोनों ऐसा कंबाइन रहो जो तीसरा कोई अलग कर न सके। सुई मैग्नेट से चिपक जाती तो फिर उसको हटाना ही कठिन होता, सहज नहीं होता, उसको बिल्कुल बहुत जबरदस्ती खींच के अलग करना होता। तो बाबा भी कहते कि आप आत्मा बिल्कुल बाबा के साथ ऐसे कंबाइन रहो जो कोई आपको अलग कर ही न सके। आज का अव्यक्त इशारा वर्तमान समय के प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखने चाहती है। हर चीज इंस्टेंट चाहिए, कोई भी बात नहीं, दो मिनट भी ठहरने का धीरज नहीं, इंस्टेंट तुरंत ही उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तन मन कर्म और संपर्क संबंध में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। शांति की शक्ति से आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मप्रत पहुंच सकता है। इस शक्ति का विशेष मंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वो सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। संगम युग में याद की विधि, शुभ भावना की विधि से सब प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति, अविनाशी प्राप्ति। वो तो लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं, बहुत नुकसानकारक भी होती और यदि कुछ रिजल्ट भी होती तो वो अलग काल के लिए, परंतु राइट बुद्धि से सिद्धि को प्राप्त करना वो बाबा सिखलाते हैं। तो आज आपने मुरली किस स्थिति से सुनी? बहुत रुचि से सुनी और साथ साथ विश्व के कल्याण की भावना भी बहुत रुचि से मन में सदा वो प्रज्वलित रहे। आत्मा का दीपक इतनी रोशनी करे जो यहाँ की सब लाइट मिल करके विश्व में फैलती जाए और फिर विश्व की जागृति होती रहे। बाबा के स्थान तो सारे विश्व में अभी बन ही गए हैं, कहीं कहीं स्थानों पर छोटा स्थान, कई स्थानों पर बड़ा स्थान, परंतु करीब करीब सारे विश्व में बाबा का संदेश तो भिन्न भिन्न रीति से दे रहे हैं, चल रहा है। परंतु अब बाबा की प्रत्यक्षता के लिए एक शुद्ध संकल्प हो, शक्तिशाली संगठित रूप में संकल्प हो, तो वो भी भगवान का कार्य जल्दी संपन्न हो सके। आज ब्रजमोहन भाई साहब के लिए और मेरा बहन के लिए भोग लगा रहे हैं और उनका भाग्य कि दिवाली के संबंध के कारण भी अनेक बाबा के बच्चे यहाँ वहां से आकर पहुंचे हैं, तो आज मधुबन में विशेष भोग और साथ साथ ज्ञान स्रोत में भी अभी भोग लगेगा। परंतु आज फिर नीचे भी शांति वन में भी यही कार्य रहेगा विशेष भाई साहब के भोग का। आप सोचो कितनी महान आत्मा है जो मैं सिर्फ तीनों ही कॉम्प्लेक्स में दिवाली के समय उसका भोग लग रहा, परंतु विश्व भर में विश्व भर की सेवा की है तो विश्व भर उसको बहुत प्यार से याद करती है। ओम शांति।
ओम शांति। आज ओम शांति आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में आदरणीय जयंती दीदी जी मुरली सुनाने के लिए हम सबके बीच में आए हैं। हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। जयंती दीदी बहुत व्यस्त रही क्योंकि शांतिवन में भी अनेक कार्यक्रम, ज्ञान सरोवर में पीस ऑफ माइंड के कार्यक्रम के लिए कल आई और आज हम सबसे मिल करके फिर ज्ञान सरोवर जाएंगे। वहां पर जो गेस्ट हैं उनसे मिलेंगे और बीच बीच में हम सबसे आप मिलते रहेंगे क्योंकि अभी फॉरेनर सीजन है तो हमारी सब दीदियां अभी पहुंच जाएंगी, कुछ तो पहुंच चुकी हैं। बीच बीच में सबसे हम मिलते रहेंगे। आज हम सब मिलकर के आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन भाई जी के निमित्त और मीरा बहन के निमित्त विशेष भोग रहेगा। मधुबन के सभी समर्पित, मधुबन ग्लोबल हॉस्पिटल के सभी समर्पित और ट्रायल वाले आज शाम को 6:30 बजे पांडा भवन के मेडिटेशन हॉल में बैठेंगे। खास ब्रजमोहन भाई जी के निमित्त या सौगात मिलेगी, कोई भी मिस नहीं करेंगे। और कल प्रातः मुरली क्लास के बाद दिवाली के निमित्त यहाँ पर भोग रहेगा और दिवाली सेलिब्रेशन का कार्यक्रम नहीं रखा है, केवल हम सब आत्म ज्योत को और ज्यादा प्रज्वलित करेंगे और केवल एक दो कैंडल लाइटिंग दीपक यहाँ भोग के सामने लगाएंगे, बाकी और ज्यादा डेकोरेशन आदि नहीं किया है। फिर भी एक आध तो लगा ही देते हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा डेकोरेशन नहीं करेंगे क्योंकि हम सभी विशेष स्वयं के ऊपर पुरुषार्थ करते हुए स्वयं की ज्योति को और पावरफुल बनाने का विशेष पुरुषार्थ करेंगे। अभी हम सभी चलते हैं वतन की ओर, बाबा को और खास ब्रजमोहन भाई मीरा बहन को याद प्यार और आप सबकी तरफ से उन्हें भोग स्वीकार कराएंगे क्योंकि ब्रजमोहन भाई जी ब्रह्मा भोजन को भी बहुत प्यार करते थे। आज का भोग ब्रह्मा भोजन जैसा ही है, ब्रह्मा भोजन जैसा बनाया गया है और मीरा बहन तो खाना बनाने में खिलाने में बहुत ही एक्सपर्ट थी और इतनी एक्यूरेट थी खाना बनाने में कि कोई भी चीज की कमी ना हो, जिसको बाबा कहते हैं कि सतयुग के अंदर आपका भोजन भी परफेक्ट होगा, तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। अच्छा ओमशन
तेरी हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के
पीते हैं तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं रहे याद सदा ही साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं पल बीते तेरी यादों में जो पल बीते तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं वो पल अविनाशी होते हैं हर पल को सफल बना देंगे हर पल को सफल बना देंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं या प्रभु संग संग बाबा यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या इस दुनिया के सुख पाने क्या लहराते रहे तेरी यादों में लहराते रहे तेरी यादों में उन यादों में खो जाएंगे उन यादों में खो जाएंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
शांति। आज विशेष आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन भाई मधुबन के मीरा बेन तथा साथ साथ एक बात आपको बतानी थी, हमारे बहुत प्यारे निर्मला दीदी का भी आज दिन है, जैसे भोग में बैठे तो उनके लिए याद आए, तो उनके निमित्त बाबा को भी त्रिमूर्ति के निमित्त बाबा को याद किया। और जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में पहुंचते के देखती हूँ चारों ही तरफ बहुत सुंदर डेकोरेशन थी, और दूर से बाबा और ब्रजमोहन भाई बहुत नजदीक आए, उस डेकोरेशन को देखकर बहुत मुस्करा रहे थे। बाबा ने ब्रजमोहन भाई को कहा, देखो बच्चे कैसा लग रहा है, तो ब्रजमोहन भाई मुस्कुराते हुए बोले, वो तो उसी भावना से जहाँ पर कोई मॉडल बनाते हैं, जहाँ कोई विशेष कार्यक्रम होता है, स्टेज होती है, विशाल कार्यक्रम होती है, उसी भावना से डेकोरेशन को देखकर कहने लगे, बाबा हम जो डेकोरेशन करते हैं उसमें और इसमें बहुत अंतर है। हमारे डेकोरेशन में लगता तो अच्छा है, लेकिन इस डेकोरेशन में प्यार भावना और साथ साथ ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही है जो दिल को बहुत छू लेती है। तो बाबा ने कहा, ये सब बच्चों के प्यार भावना और जिन जिन की विशेष सेवा, चाहे ब्राह्मण चाहे वीआईपीस, उनकी आंतरिक स्थिति के जो स्टेज है वो एकदम बहुत ही सुंदर और पावरफुल है, तो सब के सब अपनी भावनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। तो फिर तो क्या देखा कि ढेर सारे बाबा के बच्चे नियमित जो इस समय सेवा पर उपस्थित है, हमारे दीदियां, वरिष्ठ दादाएं और वारसी दिल्ली के सभी टीचर्स में और नियमित जो सेवा करने वाले थे सब सामने थे। तो बाबा और ब्रजमोहन भाई उनको देख रहे थे, मुस्करा रहे थे। बाबा ने कहा, देखो बच्चे क्या अंतर लगता है। तो ब्रजमोहन भाई ने कहा, साकार वतन में भी इन सबसे मिलते रहे, ये बाबा के बच्चे बहुत ही प्यारे न्यारे और बहुत ही इतने बाप के स्नेह में खोए हुए हैं, लेकिन आज अव्यक्त वचन में जो मिलन है वो मिलन उससे भी न्यारा और प्यारा है। तो कहा कि अव्यक्त वचन का जो दृश्य है, ब्राह्मण परिवार का मिलना और देश विदेश की विशेष आत्माओं को वाइब्रेशन देना, ये तो सेवा का बहुत ही लाइट और पावरफुल साधन है। तो मैं फिर बाबा ने जैसे उनको मधुबन का चक्कर लगवाया, मधुबन के स्थानों को देखकर वही पुरानी यादें, बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी, बाबा का हाथ पकड़ करके चल रहे थे और सारे पांडव भवन में ब्राह्मण खुशियों में नाच रहे थे, गीतों के मधु ध्वनि में चल रही थी। फिर बाबा को मैंने बताया कि आज सबने बहुत याद दी है और प्यार से ब्रह्म भोजन भेजा है, तो बाबा ने उनको खिलाने लगे तो खुद उठा करके बाबा को भी खिलाया और सब ब्राह्मणों को अपने हाथ से खिला रहे थे और खुशी में नाच रहे थे। फिर इतने में बाबा ने मेरा बहन को इमर्श किया, तो उसको भी मैंने बताया कि मेरा बहन आपको सब मधुबन वाले बहुत याद करते हैं। तो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बाबा ने तो बहुत कुछ अनुभव कराए। बाबा ने कहा, ये बच्चे शुरू से लेकर के भाग्यशाली तो क्या सौभाग्यशाली आत्मा रही है, लौकिक अलौकिक जन्म, यज्ञ में होना, यज्ञ की पालना, बाबा दादियों की पालना, छत्र छाया में रहे, अपने विशेष भोले संस्कार के कारण कई प्रकार की सेवा, विशेषकर ब्रह्म भोजन, और ब्रह्म भोजन के नाम से तो बहुत खुश हुए। बाबा ने कहा, ये बच्चे को ब्रह्म भोजन में खाना बनाने का बहुत इंटरेस्ट था और उसमें भी एक्यूरेट होना चाहिए, तो इसका एक्यूरेसी का भी गुण था कि जिसको ये ब्रह्म भोजन भोजन मिले तो उसको ऐसा टेस्ट आए तो वो अनुभव कराते थे। भोले बच्चे ने तो एक एक की अथक सेवा की, लेकिन इस बच्चे ने अपने इस विशेष गुण के कारण अनेकों का भी भाग्य और अनुभव कराया और लास्ट में बच्चे की स्टेज क्या रही, न्यारी और प्यारी, कोई भी प्रकार की स्मृति नहीं थी, केवल बाबा और बाबा का यज्ञ। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य और भाग्य लेकर गए हैं। तो ब्रह्म भोजन को देखते ही इतनी खुशी में कहती, मधुबन वाले तो अभी खाना ब्रह्म भोजन बनाने में एक्सपर्ट है और भी सबको इस ब्रह्म भोजन से बहुत कुछ अनुभव होते हैं। फिर बाबा ने निर्मला देवी को इमर्श किया और निर्मला देवी को इमर्श करते हुए बाबा ने बहुत सुंदर सा ऐसे ट्रांसपेरेंट तख्त दिखाया, उसके ऊपर बैठी थी।
बाबा ने कहा ये बच्ची ट्रांसप्लांट है, बाबा ने इस बच्ची को शुरू से लेकर के निर्मल आश्रम का टाइटल भी दिया है और लास्ट में भी बच्ची ने देश विदेश की सेवा करते हुए मधुबन के धरने पर आकर के ज्ञान सोल में बैठ करके जो सेवाएं की देश विदेश के ब्राह्मण वीआईपीस की, वो भी एक बहुत बड़ा बच्ची का भाग्य रहा है। तो निर्मला दीदी तो न्यारी और प्यारी थी, मैंने उनको बताया आपको पता है ना कि पीस ऑफ माइंड रिट्रीट चल रही है और पीस ऑफ माइंड रिट्रीट के निमित्त भी आए हुए, तो बहुत मुस्कुराती है, कहती बाबा की सेवा बहुत प्यार से करती है और सदा करते आए हैं और भी करते नहीं। फिर ज्ञान स्वर निवासी, मधुबन निवासी, शांतिवन निवासी भाई बहनों को बहुत याद देती है, कहती बस बाबा को साथ लेकर हाथ पकड़ करके चलते हैं, इकोनॉमिकल रहें और साथ साथ बाबा जैसे कहते हैं कि हमको ट्रांसपेरेंट बनना है वैसे ही बने। फिर बाबा ने त्रिमूर्ति को सामने ला करके तीनों को भोग स्वीकार कराया और तीनों ही अपने मस्ती में, दीदी निर्मला तो बाबा का हाथ पकड़ कैसे कर रहे थे, बेजमन भाई ताली बजा करके और खुशियों में झूम रहे थे, मेरा मैं दृष्टि देते हुए बाबा को देखती, कहती है कमाल है बाबा की, बाबा ने सबको भरपूर किया है। फिर बाबा ने बेजमन भाई को कहा कुछ कहना है, तो बेजमन भाई ने कहा बस बच्चे अभी बीच बीच में साइलेंस का अभ्यास कर अव्यक्त वचन के अनुभव करे, यही ब्राह्मण जीवन की अनुभूति और इसके द्वारा प्राप्ति भी थोड़े समय में अधिक होती है। फिर सबको याद दिया, बाबा ने भी सबको याद प्यार दिया। ओम शांति।